जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सतगुरु परमात्मा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो, मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी नहीं, क्योंकि जब तप वैराग्य विचार संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संतजनों ने कहे हैं उनसे तुम संपन्न हो, और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए गए हैं सो सब मुझ में है। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है, वैसे ही गुणों से संपन्न मैं हूँ। इससे तुम मेरे वचनों को रजो और तमो आदि गुणों को त्याग कर शुद्ध सात्विकवान होकर सुनो। हे रामचंद्र जी, यह संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है, वह योग रूपी गारूड़ी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। सर्प के विष से एक जन्म में मरता है और संसरण रूपी विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता है, कदाचित शांतिमान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सच्छास्त्र के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है वह आनंदित हुआ है, और उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है। वह सब क्रिया करने में उसे आनंद विलास है। जिसने सत्संग और सच्छास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है, उसको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े कि नहीं जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया, उनको नरक रूपी अग्नि में जलना, चक्की में पीसा जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा जाना आदि, और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट है प्राप्त हों। हे रामचंद्र जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से ही सब दुख होते।
श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 22। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब जीव को संतों के संग और सच्छास्त्रों के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त हो जाती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। तब विवेक रूपी बुद्धि उदय होती है और संसार में त्याग बुद्धि होती है, तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है, दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जब पुरुष ज्ञातगेय होता है तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक किनाई हो जाता है, और संसार की ओर से वैराग्य भोगों में अभोग और रस में नीरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्मरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जल रूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है तब उस फुरने से जड़ हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है तब तक वहां से मृग तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती, और जब वर्षा होती है तब नष्ट हो जाती है। तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है तब तक मन नष्ट नहीं होता, और जब ज्ञान की वर्षा होती है तब दृश्य सहित मन भी नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग निरुपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है तब जैसे पिंजरे से टूटे पक्षी निर्बंध होता है तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति उसकी शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है तैसे ही ज्ञानवान शोभता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्व समता भाव बरतता है और न्यूनता और विशेषता भाव नष्ट हो जाता है। जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है, और वह सब चेतन प्रकाश देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं तैसे वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात गेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह न उदय होता है न अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है वह उस पद को प्राप्त होता है जहां ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्थित है और सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उसका भासता है पर हृदय अहंकार से रहित है, और विकल्प के समूह उसको खींच नहीं सकते। जैसे जल के अभाव जानने वाले को मृग तृष्णा की नदी नहीं खींच सकती। हे रामचंद्र जी, आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है उसको रमणीय रूप जान के ज्ञानवान खेद नहीं पाता। देह के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता और उपजने में उपजना नहीं मानता। जैसे घट उपजे से आकाश नहीं उपजता क्योंकि आगे सिद्ध है, और घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता, तैसे देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता और देह के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता। जब ऐसा विवेक उदय होता है तब वासना जाल नष्ट हो जाता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे मृग तृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूं और जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण है, देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं और सब आत्मसत्ता करके स्थित है वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है, मैं अनंत चिदाकाश हूं और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूं, और आदि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त में नहीं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए, ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूं, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हो। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अध ऊर्ध्व मध्य और सब में मैं व्यापा हूं, मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं तैसे ही सब मुझ में पिराए हैं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। न मैं हूं न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूं। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और लीन हो जाते हैं तैसे ही मेरे में जगत फुरते हैं और लीन होते हैं। अथवा प्रथम अहम है तब दृश्य जगत होता है। सो न मैं हूं न जगत है, केवल एक आत्मसत्ता है। अहम और मम उसमें कोई नहीं। ऐसे जो देखता है सो यथार्थ देखता है। दृश्य से रहित मैं चैतन्य रूप भाव अपार हूं और मैं ही जगत काल को पूर्ण कर रहा हूं। जो पुरुष ज्ञानवान है वे सुख दुख और भाव अभाव में चलायमान नहीं होते, वे केवल ब्रह्म रूप में स्थित है और जगत के भाव अभाव से रहित अनाभाव सन्मात्र रूप है। जो हे औपादेय बुद्धि से रहित आकाशवत सर्वात्म भाव में स्थित हुआ है उसको जगत का कोई पदार्थ अपने वश नहीं कर सकता। वह महात्मा पुरुष परमेश्वर तम प्रकाश से रहित सब कल्पनाओं से मुक्त सम और स्वच्छ रूप है और उदय अस्त से रहित सम वृक्ष है। जो ऐसी परम बोध अनंत सत्ता में स्थित है उसको मेरा नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र किनाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुखरूप है तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित हो रहता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, शरीर रूपी नगर कैसा है, उसमें रह के योगिराज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्वगुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंभ है, किवाड़ पट है, रोम वनस्पति है, उदर खाई है, छाती चाक है, नव द्वार है और उनमें नेत्र झरोखे हैं। उन द्वारों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली है जिनसे लेता देता है। मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर है और रेखा माला है जो भिन्न भिन्न लगी हुई है। नाड़ी विभाग करने के स्थान है और प्राणवायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूप आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है, जिसने इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल है। ऐसा शरीर रूपी पूर्ण ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। हे राम जी, जो अज्ञानी है उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित है, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने भी नहीं देते। वे शत्रु काम क्रोध मान मोह आदि अज्ञान है, उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते, सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता धीरज संतोष वैराग्य समता मित्रता मुदिता और अपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों के साथ रखता है और उनसे सदा वह शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके और विचार रूपी लगाम उसके लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने को जाता है, जिससे सदा आनंदवान रहता है और भोग और मोक्ष दोनों में संपन्न होता है। जैसे इंद्र अपने पूर्व में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है और जैसे घट के फूटे से घटाकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे ही देश के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती। वह ज्यों का त्यों ही रहता है। यद्यपि उसके देह होती है तो भी वह उसे स्पर्श नहीं करता। जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होके शरीर रूपी नगर में विचरता है तब मैत्री रूपी नखों से सबको देख तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास है, उससे शोभता है और सदा आनंदवान विचरता है। वह जीवों को दुख रूपी आरे से कटता देखता है, जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के पृथ्वी में लोगों को जलता देखे और आप आनंदवान हो, तैसे ही वह ज्ञानवान जीवों को दुखी देखता है और आप आनंदवान रहता है। उसकी दृष्टि में तो सदा अद्वैत रूप है और आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। उसके निश्चय में जगत जीव कोई भी नहीं और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी और से उसको नियंता नहीं, वह सर्व संपदा संपन्नवान विचरता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा न्यूनता से रहित विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोगों में एवं भोगों को सेवता देखता है तो भी वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदाशिव जी ने पान किया था परंतु उनको वह दुखदायक न हुआ, तैसे ही वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जान के जब उसे अपने वशवर्ती किया तब मित्र भाव हो जाता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जीव भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं है, तब वे सुख के कारण होते हैं और जब तक इनको सत्य जान के आसक्त होता है तब तक दुख के कारण होते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और आपस में परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं परंतु आपस में आसक्ति नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, वैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई काशीत किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि आते हैं और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह द्वेष किसी से नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधनवान नहीं होता, उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं, कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते। हरि ओम, हरि ओम, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।